नमस्कार। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक है कामधेनु है गायत्री। ये स्रोत गायत्री महामंत्र की जो शक्ति है और उसे कैसे साधा जाए उस पर रोशनी डालता है।
जी, कामधेनु है गायत्री।
पूजनीय गुरुदेव इसमें गायत्री मंत्र की तुलना कामधेनु गाय से करते हैं, मतलब जैसे कामधेनु सब इच्छाएं पूरी करते हैं वैसे ये मंत्र भी। लेकिन ये बात जहन में आती है कि भाई ये क्षमताएं मिलती कैसे हैं? क्या ये बस यूं ही मिल जाती हैं, सहज है?
हाँ, यहीं पर देखिए बात थोड़ी गहरी हो जाती है। पूज्य गुरुदेव ये बिल्कुल साफ करते हैं कि सिर्फ मंत्र जाप वो काफी नहीं है। इन शक्तियों को पाने के लिए वो जिसे प्रचंड पुरुषार्थ कहते हैं, मतलब एक असाधारण बहुत गहरा प्रयास, उसकी जरूरत होती है। एक तरह का कर्मयोग है ये।
अच्छा, प्रचंड पुरुषार्थ, ये सुनने में ही काफी तीव्र लग रहा है। तो मतलब ये सिर्फ माला फेरने से बहुत आगे की बात है। क्या गुरुदेव ने इसका कोई उदाहरण दिया है अपनी जीवन से श्रोत में?
बिल्कुल बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव अपने ही जीवन का उदाहरण देते हैं। सोचिए, वर्षों की कठोर साधना, जौ की रोटी और छाछ जैसा बिल्कुल सादा भोजन, और 70 साल की उम्र में भी बिना किसी सहायक के घंटों तक लगातार लिखते रहना, अथाह लेखन कार्य, वो इसे सीधे सीधे कर्मयोग से जोड़ते हैं।
सच में 70 की उम्र में बिना सहायक के?
जी हाँ, और कर्मयोग का ये जो नजरिया है ये उन्हें 15 साल की छोटी सी उम्र में गांधी जी से मिला था। इसका सार क्या है कि कोई भी काम हो, चाहे वो मान लीजिए लकड़ी चीरना जैसा मेहनत का काम हो या साधारण सा दिखने वाला काम, उसे पूरी दिलचस्पी से करना, पूरी तन्मयता से, मतलब उसमें एकदम डूब कर और एक सामाजिक जिम्मेदारी के भाव के साथ करना, तो जब काम कुशलता और निष्ठा से किया जाए वो अपने आप में योग बन जाता है।
तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक साधना या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका हुआ जो रोजमर्रा के जीवन पर हर काम पर लागू होता है। क्या इससे मतलब सामान्य जीवन में भी सफलता मिलती है?
हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं कि इसी कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाकर उन्हें जीवन के हर पहलू में सफलता मिली, चाहे वो उनका गहरा अध्ययन हो या इतना विशाल लेखन कार्य या समाज सेवा, सब में असाधारण सफलता। वो अपनी एक आदत का जिक्र करते हैं, रोज एक घंटा टहलते हुए अध्ययन करना। इसी से वो इतने ज्ञानी बने, लोग तो उन्हें चलता फिरता विश्वकोश कहते थे।
टहलते हुए पढ़ना, ये तो कमाल की बात है।
जी, और ये कर्मयोग सिर्फ अपनी उन्नति तक ही नहीं रुकता, इसका सामाजिक असर भी बहुत जबरदस्त है। श्रुत में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। एक फैक्ट्री थी जो बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर थी, तो उसके कर्मचारियों ने क्या किया, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर उसे बचा लिया।
अरे वाह, कर्मचारियों ने अपनी बचत लगा दी।
हाँ, ये दिखाता है कि जब कोई इंसान या कोई संस्था कर्मयोग से काम करती है ना, मतलब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, तो वो इज्जत और भरोसा कमाती है, और फिर समाज, लोग खुद ब खुद मदद के लिए आगे आते हैं। पूज्य गुरुदेव को जो इतना सम्मान मिला, इतना सहयोग मिला जीवन भर, वो इसी कर्मयोग का प्रमाण है।
तो ये जो गायत्री साधना है और ये कर्मयोग है, इनके बीच का रिश्ता क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? क्या ये ऐसा है कि जैसे एक बीज है और दूसरा खाद पानी, एक के बिना दूसरा अधूरा?
बिल्कुल 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 सही दिशा में सोच रही हैं आप। पूज्य गुरुदेव ठीक यही बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि उपासना एक बीज की तरह है, लेकिन उस बीज से फलदायी पेड़ बने इसके लिए कर्मयोग रूपी खाद पानी अनिवार्य है, जरूरी है एकदम। सिर्फ बीज बो देने से काम नहीं चलता। उनके मुताबिक लोगों को अक्सर उपासना की विधि तरीका वो तो पता होता है, पर ये खाद पानी कैसे देना है, मतलब कर्म में वो कुशलता, वो समर्पण, वो तन्मयता कैसे लानी है, ये रहस्य वो समझ नहीं पाते।
अच्छा, तो असली चीज वो खाद पानी है?
हाँ, कह सकते हैं। और वो ये भी जोर देकर कहते हैं कि देवता या ईश्वर वो किसी मनमानी से या बस भेंट चढ़ाने से वरदान नहीं देते, ऐसा नहीं होता। दरअसल ये तो व्यक्ति के अंदर सही साधना और कर्मयोग से पैदा हुआ एक चुंबकत्व है, एक आकर्षण शक्ति है जो देवीय कृपा को अपनी तरफ खींचती है। ये एक व्यवस्थित आध्यात्मिक नियम है, कोई अंधेरगर्दी या पक्षपात का मामला नहीं है ये।
तो इस सारी बातचीत से जो बात साफ हो रही है वो ये है कि गायत्री मंत्र बेशक कामधेनु जैसा है, उसमें अपार शक्ति है, पर उस शक्ति को जगाने के लिए, उसे पाने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ और कर्मयोग, मतलब अपने हर काम में, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, पूरी लगन, पूरी तल्लीनता और जिम्मेदारी का भाव, ये बेहद जरूरी है, अनिवार्य है।
जी हाँ, और पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन ही इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे साधना और कर्मयोग का मेल इंसान को भौतिक समृद्धि भी देता है, यानी संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और सहयोग भी दिलाता है, यानी इज्जत और मदद, और आंतरिक शक्ति और तेज भी देता है, जिसे ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं, एक तरह का आध्यात्मिक ओज। उन्होंने खुद कर्मयोग से अपार सम्मान पाया, साधन जुटाए और लाखों लोगों को प्रेरणा दी।
श्रोत के अंत में पूज्य गुरुदेव एक सवाल भी छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है कि उपासना में ये जो जरूरी खाद पानी है, ये कर्मयोग, ये आखिर डाला कैसे जाए? वो कौन सा रहस्य है, कौन सी चाबी है जिसे एक साधारण साधक का जप भी पूज्य गुरुदेव के जप जैसा प्रभावशाली और फलदायी बन सके?
ये वाकई एक गहरा सवाल है कि कर्म की कुशलता और अंदर का समर्पण कैसे हमारे बाहरी जीवन यानी सफलता, सम्मान, और हमारे आंतरिक जीवन यानी शांति, शक्ति, दोनों के दरवाजे खोल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ मंत्र या विधि ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे का जो योग है, वो जुड़ाव, वो तन्मयता, वो कितना ज्यादा मायने रखता है, शायद वही असली कुंजी है।